जय राधा माधव कुज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राम जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय जसदानंदन ब्रज जन रंजन 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 जमुना तीर बनचारी तीर बनचारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 Thank you. राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Nitai Gaurango, Nitai Gaurango Nitai Gaurango, Nitai Gaurango Nitai Gaurango, Nitai Gaurango Oh, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango Nitai Gaurango, Nitai Gaurango Nitai Gaurango, Nitai Gaurango Nitai Gaurango, Gaura Hare Nitai Gaurango, Gaura Hare Gaura 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 Hare O Prabhu Gaura 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 Hare Jaya Jagannath Jaya Jagannath O Jaya Jagannath Jaya Jagannath Jagannath Swami Jaya Jagannath oh, Jaya Balade Jaya Subhadra oh, Jaya Balade Jaya Subhadra oh, Jaya Balade Jaya Subhadra Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Sri Radhe. Jaya साई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल साई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राज आचार्य अष्टतुर सुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरित ठाकुर महाराज की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, समवेत भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्राये सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम पढ़ेंगे, कैंटो 9 अध्याय 16 श्लोक 9। योजनस्य सुताराज मरन्तस्तु पितुबधम् रामवीर्य पराभूता लेभिरे शर्म न कोचि। योजनस्य सुताराज मरन्तस्तु पितुबधम् रामवीर्य पराभूता लेभिरे शर्म न कोचि। योजनस्य सुताराज मरन्तस्तु पितुबधम् रामवीर्य पराभूता लेभिरे शर्म न कुचि। राम वीर पराभूत देवी रे शर्म न कुसी।
माता जी
योजन से सुतराजन स्मरण दास पितु वदन राम वीर पराभूत
पहले दो श्लोक है हम पढ़ लेंगे। श्लोक 7, सत्यपति पुत्र जमदग्नि परशुराम से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनसे इच्छा अनुसार वर मांगने के लिए कहा। परशुराम ने कहा, मेरी माता तथा मेरे भाइयों को फिर से जीवित हो जाने दें और उन्हें ये स्मरण न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। मैं आपसे इतना ही वर मांगता हूँ। नेक्स्ट, तत्पश्चात जमदग्नि के वर से भगवान परशुराम की माता तथा उनके सारे भाई तुरंत जीवित हो उठे और वो सभी अत्यंत प्रसन्न हुए, मानो गहरी नींद से जगे हो। परशुराम ने अपने पिता के आदेश पर अपने परिजनों का वध कर दिया था, क्योंकि वो अपने पिता के बल, तपस्या तथा विद्वता से परिचित थे। आज के श्लोक हैं। या जो अर्जुन से कार्तवीर अर्जुन के सुता पुत्र राजन हे महाराज परीक्षित स्मरंत सदैव स्मरण करते हुए स्वपितुवधम परशुराम द्वारा अपने पिता के वध राम वीर्य पराभूत भगवान परशुराम की श्रेष्ठ शक्ति द्वारा पराजित ले भीरे प्राप्त किया शर्म सुख न नहीं कोचीज कभी। ट्रांसलेशन एंड पावरपॉइंट डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की ट्रांसलेशन। हे राजा परीक्षित, परशुराम की श्रेष्ठ शक्ति द्वारा पराजित कार्तवीर अर्जुन के पुत्रों को कभी सुख नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्हें अपने पिता का वध सदैव याद आता रहा। तात्पर्य, जमदग्नि सचमुच अपने पिता के कारण अत्यंत शक्तिशाली थे, किंतु अपनी पत्नी रेणुका के थोड़े से अपराध के लिए उन्होंने उनके वध किए जाने का आदेश दे डाला। यह निश्चय ही पाप पुण्य कृत्य था। अतएव कार्तवीर्य अर्जुन के पुत्र ने जमदग्नि को मार डाला। जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया है, परशुराम को भी कार्तवीर्य अर्जुन के वध का थोड़ा सा पाप लगा, किंतु ये इतना बड़ा पाप न था। अतएव चाहे वो कार्तवीर्य अर्जुन हो, परशुराम हो या जमदग्नि हो या अन्य कोई, उसे सावधानी से कर्म करना चाहिए, अन्यथा पाप कृत्यों का फल भुगतना पड़ता है। वैदिक साहित्य से हमें यह शिक्षा मिलती है। ओम ज्ञानधिमीरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथ नितं तं सजीवम् साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीशाखानितंश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। ये जो भागवत की प्रसंग है अभी परशुराम जी की जो चर्चा चल रही है इसको समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि सभी बड़े बड़े व्यक्ति हैं। बड़े व्यक्तियों का कार्यकलाप को समझना इतरजनों के लिए बहुत ही कठिन है, सहज से हमें समझ नहीं सकते। जमदग्नि कम के व्यक्ति नहीं थे, ना परशुराम कम थे। कार्तिकेय अर्जुन ठीक है वो क्षत्रिय थे, लेकिन परशुराम जी और जमदग्नि ये इतने बड़े बड़े व्यक्ति हैं, फिर छोटी छोटी बातों में उनके भीतर अनर्थ दिख पड़ती है, तो उनको समझना और वो समझते हुए उनका चरित्रों से सार वस्तु को हृदय में थामना ये बहुत कष्टकर व्यापार है। भक्ति में जब तक हम परिपक्व नहीं होते तो अमल पुराण भागवत श्री महाभागवत और श्री ग्रंथ भागवत ये दोनों की विषय को समझना अति दुष्कर कार्य है। जो भी है भक्तों के मुंह से जो श्रवण किए हैं और भक्तों ने अपने हृदय के अनुभव को ये परशुराम चरित्र को लेकर अपने हृदय का अनुभव को जिस प्रकार सत्संग कार्यक्रम में बखाने कहें भक्तों के सामने बताएं तो भक्तों की और पीछे चलते हुए तो उनके रियलाइजेशन का तैयार करते हुए भाग लेते हुए तो थोड़ी बहुत जो श्लोकों को समझा तो उनको आप लोगों के सामने रखने के लिए साहस करूंगा। तो क्योंकि ये श्लोक ऐसे है तो समझ में नहीं आता है, इतने बड़े बड़े व्यक्ति हैं लेकिन कैसे ऐसे सुबह कैसे तो जो भी है आज की जो परशुराम जी का विश्व पर विजय प्राप्त करना ये जो प्रसंग है, पहली बात तो यह है कि क्षत्रियों को ब्राह्मण के संपत्ति के ऊपर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर यही देखती है कार्तिकेय अर्जुन तो क्या परशुराम ना सॉरी जमदग्नि के जो कामधेनु है तो उनके ऊपर अपने अधिकार को जमाए, और जो ब्राह्मण होते हैं उनके संपत्ति को छोड़कर सॉरी ब्राह्मण का संपत्ति को छोड़कर और बाकी वर्गों के लोगों के संपत्ति के ऊपर एक क्षत्रिय का अधिकार होती है। श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्रील प्रभुपाद की। ब्राह्मण का संपत्ति को छोड़कर बाकी वर्गों के जो लोग के संपत्ति के ऊपर राजा का क्षत्रिय का अधिकार होता है तो उनके ऊपर वो अपने कर ले सकता है। लेकिन यहाँ पर ये दिख जाती है जो जमदग्नि इतना क्षत्रिय ये परशुराम थे तो वह क्षत्रियों के देखभाल से ब्राह्मण का थैसान होनी चाहिए, और जब वह क्षत्रिय ब्राह्मण को नेग्लेक्ट करता है तो फिर ब्राह्मण अग्निहोत्र यज्ञ नहीं कर पाता या ब्राह्मण का बालक वेद नहीं पढ़ पाता, ये सत्य बात है। और यही गलती यहाँ पर कार्तिकेय हरि ने अर्जुन ने किए, तो परशुराम का जो ना जमदग्नि का जो कामधेनु था उनके ऊपर अपने अधिकार को लगाया। और यहाँ पर यही कह सकते हैं, ब्राह्मण जब पतित हो जाता है तब क्षत्रिय ब्राह्मण के ऊपर टैक्स बसा सकता है, बैठा सकता है। और जब तक ब्राह्मण अपनी स्थिति में है तब तक तो क्षत्रिय का कोई हक नहीं है कि उनके ऊपर कोई हुक्म लागू करे। और ऊपर से ये बात दिखती है तो कार्तिकेय और उनका जो पुत्र थे वो जमदग्नि का भी वध कर दिए, यदि वो ब्राह्मण का भी वध्य नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिखा जाता है कार्तिकेय और उनका जो पुत्र लोग थे वो जमदग्नि का भी वध कर दिए। अब शुक्राचार्य ना क्या नाम महाभारत के ये बात है कि ब्राह्मण कभी वध्य नहीं है, पहले तो बात है ब्राह्मण कभी वध्य नहीं है। और जो शुक्राचार्य थे ना द्रोणाचार्य, हाँ द्रोणाचार्य थे, जब अर्जुन ने द्रोणाचार्य का जो पुत्र था वो अश्वत्थामा वो आत्ता ही बन गया था। और जब ब्राह्मण आत्ता ही बन जाता है तब तो ब्राह्मण को वध कर देना चाहिए। और इतने होने पर भी जब अश्वत्थामा आत्ता ही बन गया था और अर्जुन ने जब उनको आत्ता ही के रूप में पाया, और वो आत्ता ही के रूप में जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पाया वो समय ये जो अश्वत्थामा था ना रथ के ऊपर था ना अस्त्र के साथ था। और जब ब्राह्मण आत्ता ही होने के बाद भी यदि उनके पास रथ में नहीं होता और अस्त्र के साथ नहीं होता तो फिर ऐसे आत्ता ही ब्राह्मण को भी वध नहीं कर सकते, उनको छोड़ देना चाहिए। और यही किए अर्जुन ने, जब देखा ये अश्वत्थामा को ना उनके पास रथ है ना उनके पास अस्त्र है तो उनको बांध करके लेके आया, मारा नहीं। लेकिन और देखेंगे यहाँ पर जो उनके पिता द्रोणाचार्य थे वो मैदान में युद्ध क्षेत्र में जब थे तो हथियार के साथ थे इसीलिए वो मारा गया। लेकिन यहाँ पर अश्वत्थामा रथ और हथियार के साथ न होने के कारण वो मारा नहीं गया, तो बांध करके लेके आया, उनको पनिशमेंट दिया गया। लेकिन यहाँ पर द्रोणाचार्य इतने द्रोणाचार्य कौन थे, एक असली ब्राह्मण थे, और असली ब्राह्मण को कोई वध नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर दिखा जाता है कि द्रोणाचार्य का वध होती है, और यहाँ पर अश्वत्थामा आत्ता ही होने के बाद भी उनको छुड़ाया जाता है। तो कूटनीति के राजनीति के अनुसार वो कितने भी घृणित व्यक्ति हो वे शास्त्र नीति के अनुसार जब ये बात नहीं होती है तो उनको छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर और एक बात दिखी जाती है आज श्लोकों के द्वारा, कार्तिकेय और उनके जो पुत्र लोग थे जब देखें कि परशुराम के द्वारा उनका पिता का वध हो जाती है तो पिता का पितृहंता का जो एक प्रकार का दुख है वो पुत्रों को सताती है। और ये सताने का जो ये जो भाव है वो एक प्रतिशोध का अग्नि के रूप में प्रकट हुई है। कार्तिकेय और उनके पुत्र के भीतर अपने पितृहंता का जो बदला है ये बदला एक अग्नि के रूप में प्रकट होती है उनके हृदय के भीतर। और वो सुजग देखते हैं कब हमें ये जमदग्नि का या परशुराम का ऊपर बदला, परशुराम के ऊपर बदला लें। और ऐसे एक बार होती है तो कार्तिकेय और पुत्र लोग जमदग्नि के कुटिया में जाते हैं, और उस समय कार्तिकेय और उनके जो पुत्र लोग थे वो कुटिया में नहीं थे। और उस समय जमदग्नि ना सॉरी परशुराम और उनके भाई लोग बाहर थे। ठीक उसी समय ये कार्तिकेय और उनके पुत्र लोग गए जमदग्नि की कुटिया पर, और जाकर के जब पूजा में बैठे हुए थे कार्तिकेय और ना परशुराम जी ना सॉरी जमदग्नि जी पूजा में बैठे थे, ठीक उसी समय ये कार्तिकेय और उनके पुत्र लोग और जमदग्नि का वध कर दिए। अब जब वध करने के लिए जा रहे थे ठीक उसी समय जमदग्नि का जो पत्नी थी रेणुका वो बहुत रोक रही थी, लेकिन क्षत्रिय स्वभाव में होने के कारण तो कार्तिकेय और उनके पुत्र वो सोचे विचार नहीं किए और जमदग्नि को वहां पर वध कर देते हैं। अब वध करके तो उनका जो मस्तक है सर सिर है वो लेके आ जाते हैं और सर यहीं पर पड़ा रहता है। और अपने पति का इस प्रकार का अवसर देकर वहां पर जमदग्नि का जो पत्नी थी रेणुका वो बहुत जोर जोर से रोती है, राम राम करके बहुत जोर से आवाज करती है। हाँ, और उस समय घर से दूर थे वो पुत्र लोग, घर से दूर थे। हाँ, जब ये अपने माँ का ये राम राम का आवाज परशुराम के कान में पहुंचा तो वो कहाँ थे, तो तुरंत वहां पर दौड़ करके आते हैं और देखते हैं कि उनके पिता का इस प्रकार का अवस्था है। हाँ, तो वहां पर वो संकल्प लेते हैं, मैं सारे पृथ्वी से क्षत्रियों को विनाश कर डालूंगा। तो वही बात को लेकर वो सारा पृथ्वी में घूमते घूमते 21 बार सारे क्षत्रियों को नष्ट करते हैं। तो ये भौतिक संसार में प्रत्येक जीव, सब में प्रत्येक जीव के भीतर ये ईर्ष्या करना, द्वेष, प्रतिशोध की बदला, प्रतिशोध लेना, बदला लेना, ये प्राय जीवों में पाई जाती है। किंतु जो लोग कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं निश्चित रूप से ये बातों के ऊपर अवश्य अंकुश लगाना चाहिए। और जो अपने कृष्ण भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं निश्चित रूप से ये अनर्थों से दूर रहना चाहिए। क्योंकि ये भौतिक जगत जो है मिश्रण है, द्वैतमय जगत है। ये भौतिक जगत जो है जड़ और चेतन की मिश्रण है। आध्यात्मिक जगत जो है एक रूप है, वहां पर चेतन है, लेकिन ये भौतिक जगत जड़ और चेतन है। जड़ चेतन के कारण वो प्रत्येक जीव के भीतर ईर्ष्या स्वाभाविक है, ईर्ष्या रहेगा। और ये ईर्ष्या से हमें मुक्त होना है, हमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य मद ये सब चीजों से हमें उनको भगवान के ओर मोड़ के उनको हमें उससे हमें बच सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या से हमें बच नहीं सकते। जब तक भगवान का शरणापन्न नहीं होते तब तक ईर्ष्या का कोई इलाज नहीं है, उनका कोई नहीं है, प्रतिकार नहीं है। जब तक संपूर्ण रूप से हम भगवान के शरण नहीं जाते तब तक हमें ईर्ष्या से मुक्त नहीं हो पाएंगे। पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते न अन्यं अभयं। ये जो ये द्वैतमय संसार से अपने को बचाने के और कोई राह मैं नहीं दिख पाती हूँ। ये उत्तरा ने जब पांडव का श्रेष्ठ जीवन को बचाने के लिए उत्तरा प्रयास कर रही थी और कुरुवंश को निर्वंश करने के लिए अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आ रहा था, तो ठीक उसी समय यदि वो पांडव लोग सामने खड़े किंतु ब्रह्मास्त्र का मुकाबला करने के लिए पांडवों के पास कोई सामर्थ्य न होते हुए जानकर उत्तरा ने किसके शरण में गए, न भगवान के, मुझे बचाइए, न अन्यंग अभयं, मैं और कोई देख नहीं पाती हूँ, मेरे जो शरण है वास्तविक सत्य बात है, ये संसार में यदि आश्रय के रूप में कुछ है ये भगवान के चरण है। यही बात भी उत्तरा भी कहती है, न अन्यं अभयं, अभय करने के लिए, क्योंकि ये भौतिक जगत जो है एक भय की स्थान है, उसमें से हमें अभय होना है, बचना है, तो एकमात्र भगवान के चरण कमल है। और श्रीमद् भागवतम भी यही डिक्लेरेशन करता है कि जैसे हमें भगवान के चरण कमल का शरण में जाते हैं तुरंत हमें माया से मुक्त हो जाते हैं, इस संसार से पार हो जाते हैं, ये बात भी कहा जाता है। और आज के श्लोकों में प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बताते हैं, इस संसार में बहुत बड़े बड़े हुए हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हुए हैं, लेकिन अपने भीतर ऐसे ऐसे इच्छा को उत्पन्न किए हैं, ये इच्छा के मतलब भौतिक इच्छाएं, ये इच्छा के कारण वो बड़े बड़े गुण भी उनका अगुण हो जाते हैं, दुर्गुण हो जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे दुर्भाषा जी बहुत बड़े तपस्वी है, धन्य धन्य कहेंगे वो तपस्वी को जिन्होंने भौतिक संसार से अपने मति को हटा लिया, ये भोग से विरक्त हो गया, भगवान के चरण कमल में अपने मन को निश्चय कर लिया। तपस्या एक बहुत बड़ा गुण है, लेकिन तपस्या के साथ साथ यदि क्रोध बना हुआ है तो फिर ये तपस्या अगुण हो जाता है, दुर्गुण हो जाता है। हम देखते हैं बहुत सारे भक्त लोग भक्ति करते हैं, भक्ति के साथ साथ उनके भीतर क्रोध दिख पड़ती है, क्रोध के कारण उनका भक्ति भी डाउन हो जाती है, उनका भक्ति बेकार हो जाती है। तो ये तपस्या बहुत बड़ा गुण है, लेकिन ये क्रोध होने के नाते कभी कभी हमें दूसरे को साप दे देते हैं, हम नहीं देते हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग देखे जाते हैं, ऐसे किसी को साप दे देते हैं हाथी बन जाओ, कि किसी को साप दे देते हैं कि तुम ग्राहा बन जाओ। देवल जी ने साप दे दिया गंधर्व को कि तुम ग्राहा बन जाओ। यदि वो तपस्या के गुण है, लेकिन ये जब क्रोध इसके साथ मिल जाती है तो फिर ये तपस्या नष्ट हो जाती है, वो तपस्या फिर दुर्गुण हो जाती है। कल आप सुने होंगे, कल सुना रहे थे कि शुक्राचार्य के प्रसंग, शुक्राचार्य और देवयानी उनके प्रसंग सुने होंगे। शुक्राचार्य बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति है हाँ, लेकिन हमेशा असुरों के लीडिंग करते थे। यदि वो जानते थे, शुक्राचार्य जानते थे कि असुर लोग हमेशा ये भगवान विष्णु के विपक्ष में विरोधी है, ये जानने के बाद भी वो असुरों के सपक्ष में होते थे, असुरों की मदद करते थे। तो और ये बात जानते हैं, तो एक बार उनके जो कन्या देवयानी, उनके जो राजा थे बृहस्प्रभा, तो उनकी कन्या शुक्राचार्य की कन्या को एक बार कुएं में ढकल दिए थे। तो वो कुएं से निकले, देवयानी शुक्राचार्य की जो कन्या थी कुएं से निकले, और निकल करके वो आए अपने पिताजी के पास, आकर के सारे बातें को बताएं, और सारे बात को सुनकर शुक्राचार्य जी ने निष्पत्ति कर लिए, अभी और मैं ब्रोस प्रवाह का जजमानी नहीं करूंगा, मुझे अभी जाना है हाँ। तो ये कह करके वो जा रहे थे, तो जब ब्रोस प्रवाह को पता चला कि शुक्राचार्य जी अभी छोड़ करके जा रहे हैं, तो असुर लोग तो हमें आक्रमण करेंगे, तुरंत वो दौड़ करके आए और शुक्राचार्य जी को रुके। लेकिन शुक्राचार्य अपने कन्या के प्रति इतने आसक्त थे, यदि वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन अपने कन्या की बातों में इतने आसक्त थे, उनके ऊपर उनके इतने जोर दे रहे थे, महत्वपूर्ण समझ रहे थे, तो इतने बड़े राजा का बात को बात का जो बात उनके कान में नहीं जा रहा था, वो सुन नहीं रहे थे। जब मेरे कन्या जो कहेगी तो उनके बात आप रखोगे तो मैं फिर आपको मदद कर सकता हूं। ये बहुत बड़े ज्ञानी थे शुक्राचार्य जी, बहुत बड़े ज्ञानी थे। ऐसे ही उनके भीतर ज्ञान था, मेडिकल साइंस में तो इतने बड़े आगे थे कि आज के डॉक्टरों को तो पता नहीं है वो विद्या। शुक्राचार्य को जो ज्ञान मालूम था, जो विद्या मालूम था, आजकल के डॉक्टरों को भी ये ज्ञान पता नहीं है हाँ। इतने मेडिकल साइंस में फास्ट थे, आगे थे, आजकल के डॉक्टर लोग तो कोई मरा हुआ लोगों को जीवित नहीं कर सकते हैं। शुक्राचार्य मरे हुए लोगों को भी जीवित कर देते थे, इतने बड़े। और देवता लोग आते थे उनके पास ये विद्या को पाठ पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन ये जो उनके भीतर ज्ञान था, देखा जाता है ये संसार के भीतर बहुत बड़े बड़े ज्ञानी है, लेकिन उनके ज्ञान कैसे संग वर्जित ज्ञान नहीं है। ज्ञान है लेकिन आसक्ति रहित, संग वर्जित ज्ञान नहीं है, कहीं ना कहीं उनका आसक्ति लगा हुआ है हाँ। इसलिए उनके जो ज्ञान है वो लोगों का हृदय का अनर्थ को साफ नहीं कर पाती है हाँ। लोगों का अपने को जो ज्ञान है वो ज्ञान उनको प्रकृति के गुणों से मुक्त तो नहीं कर पाता है। और ये ज्ञान जब होता है व्यक्ति में, तो वो ज्ञान के अहंकार से वो प्रकृति के भीतर और जकड़ जाता है। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो रजस ज्ञान है, ये ज्ञान के द्वारा अपने को हमें उधार नहीं कर पाते हाँ। एक बार महाराज बता रहे थे, तो एक गांव में गए थे, तो गांव में जा रहे थे, तो गांव के एक व्यक्ति महाराज जी के पास चल रहे थे। तो व्यक्ति कह दिए कि आज ये गांव में एक व्यक्ति का मर्डर हो गया। तो महाराज बोले क्यों? तो महाराज जैसे बोले राधा गिंदु महाराज बता रहे थे, तो क्यों मर्डर क्यों हो गया? तो व्यक्ति कहने लगा कि वो तो अच्छे व्यक्ति थे। तो महाराज जी बोले कि आखिर मारा क्यों गया? इतने अच्छे व्यक्ति था लेकिन मारा क्यों गया? तो व्यक्ति कहने लगे अच्छे व्यक्ति थे लेकिन वो परस्त्रीगामी थे। तो महाराज जी कहने लगे तो आप ये बाजू में आपका थोड़ा सा अच्छे व्यक्ति थे गुण का गाया, लेकिन ये बाजू में इतना बड़ा हिमालय जैसे अवगुण को डाल दिया, वो ये तो थोड़ा सा गुण वो तो आकाश में चला गया। अच्छे व्यक्ति थे लेकिन आप क्या बोल दिया? परस्त्रीगामी थे। उसी प्रकार ये संसार के भीतर ये जमद अग्नि हो या परशुराम हो, कास्यवीर हरिण हो, जो भी है, ये बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति है, लेकिन छोटे छोटे बातों में उनके सारे अच्छे गुण वो बेकार हो जाते, नष्ट हो जाती है। महाभारत के एक घटना याद आ जाता है कि जब महाभारत युद्ध हो गया था और कौरव लोगों के सारे मारे गए थे, उस समय संजय आकर के युधिष्ठिर धृतराष्ट्र जी को बोले, ठीक है अभी आप चलिए, आपका मृतों का प्रेतकर्म कीजिए, क्रियाकर्म कीजिए। तो संजय के कहने पर धृतराष्ट्र थी अपने महल से निकले, रात में बैठ रथ लेकर के जब कुरुक्षेत्र मैदान में पहुंचाया तो देखे कि सारे जो कुरुवंश के जो स्त्रियां वो बड़े ही विकल कर क्रूर पक्षी जैसे रोती है, ठीक अपने परिवार को खोकर इसी प्रकार का रो रही है। धृतराष्ट्र जो पहुंचे देखे तो इस प्रकार का सहन नहीं हो रहा था। और जो पांडवों को पता चला कि हमारे जो ज्येष्ठ पितृव्य है, ज्येष्ठ तात है, तो वो कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। तो ये बात को सुनकर पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी वहां पर जाके पहुंचे। अब पहुंचने के बाद युधिष्ठिर महाराज पहले गए धृतराष्ट्र जी को मिलने के लिए और बड़े आलिंगन किए युधिष्ठिर जी को बड़े आलिंगन किए। उसके बाद अर्जुन गए, नकुल, सहदेव ये सब गए और अंतिम में भीमसेन गए। तो भीमसेन गए, अब भीमसेन आ रहे हैं मुझे मिलने के लिए। जब ये बात पता चला धृतराष्ट्र जी को तो मन में तय कर लिए, निश्चित कर लिए कि अभी मैं भीमसेन को मार डालूंगा, क्योंकि मेरे पुत्रों को भीमसेन अति निर्मम भाव से बद्ध किया है, तो मैं उनको मारूंगा। ये विचार जैसे ही धृतराष्ट्र के मन में उत्पन्न हुआ, ये बात तुरंत बगल में जो खड़े थे भगवान श्री कृष्ण उनको पता लग गया। और जैसे पता लग गया भगवान श्री कृष्ण को और भीमसेन जा रहे थे धृतराष्ट्र को मिलने के लिए, तुरंत युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण भीमसेन का हाथ को पकड़े और अपने और खींच लिए और एक लोहे का भीम का मूर्ति को आगे कर दिए। आज धृतराष्ट्र जाए लोहे का मूर्ति को आलिंगन किए। आज लोहे का मूर्ति को आलिंगन करते हुए वो इतने जोर से अपने छाती में दबोच लिए, उनके दबोच में आकर लोहे का मूर्ति टुकड़े टुकड़े होकर के जमीन में बिखर गया, इतने जोर से दबाए। और ये बात, ये लोहे का मूर्ति बनाया गया था जब दुर्योधन के मन में भीमसेन को मारने के लिए प्रपण किया था। भीमसेन वो पण किया था कि मैं भीमसेन को मारूंगा, क्योंकि भीमसेन के प्रति ज्यादा ईर्ष्यान्वित थे दुर्योधन। इसीलिए अपने महल के भीतर एक भीम का लोहे मूर्ति बना करके उसके ऊपर गदा पीट रहे थे, गदा अभ्यास कर रहे थे, मैं कैसे भीम को वध करूंगा। तो वही भीम का मूर्ति को भगवान श्री कृष्ण आगे कर दिए। तो उनके दबोच से जब टुकड़े टुकड़े हो गए, जब धृतराष्ट्र को पता चला अभी भीमसेन का वध हो गया है, तो तुरंत वो जमीन में बैठ गए और वो दबोच में आकर धृतराष्ट्र ने रक्त उगलने लगे और रक्त उगलते हुए वो जमीन में बैठ गए। अब बैठकर वो भीमसेन भीमसेन करके रोने लगे। तो उनको पता लगा कि अभी भीमसेन का वध हो चुका है और उनका जो क्रोध है वो शांत हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला अभी धृतराष्ट्र का क्रोध शांत हो गया है, तो फिर तो कहने लगे, धृतराष्ट्र जी आप चिंता मत कीजिए, आपका दबोच में भीमसेन का वध नहीं हुआ है। तो जो जिसको आप वध किया आपके पुत्रों के द्वारा बनाया गया भीम का ना लोहे का मूर्ति है। तब धृतराष्ट्र शांत हुए। तो भगवान श्री कृष्ण वहां पर उनको कहते हैं कि मैंने कितना बार समझाया, आप लोग तो पांडवों को विवश कर दिया युद्ध करने के लिए, तो अपने गलती को तो देखो। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहने से धृतराष्ट्र जी शांत हो गए। और भगवान श्री कृष्ण और पांडव जब आगे बढ़े, धृतराष्ट्र को आश्वासना देते हुए जब आगे बढ़े, तो फिर गांधारी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं। जैसे गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं, तुरंत वो साफ दे देती है, आप तो समर्थ व्यक्ति थे, आप यदि चाहते तो मेरा आज मैं मेरा पुत्रों का वध इस प्रकार विनाश नहीं देखता, तो आपने पांडवों को पक्ष देते हुए मेरे पुत्र को उपेक्षा कर दिए। और ऐसे कहते हुए उन्होंने साफ दे दिए। ये बात तो गांधारी जानती थी कि जो दिन भगवान श्री कृष्ण संधि के पांडव कौरव के पास पहुंचे थे, लेकिन कौरव ने उनको नकार दिए, तो वो दिन गांधारी को समझ में आ गई थी मेरे पुत्रों का नाश हो गया है। तो और उसी समय गांधारी को भी भीष्म पितामह भीष्म और विदुर जी बता दिए थे कि आपके पुत्रों के ऊपर से ममता छोड़ दो। अरंधति ने कहा वहां पर कि कृष्ण, मैं मुझे मालूम था कि हाँ वो दिन जब पितामह भीष्म और विदुर जी कह दिए, मैं उस दिन से मुझे मालूम हो गया था कि मेरा पुत्रों का वध हो गया है। आपने जब संधि प्रस्ताव में विफल हो गए तो मुझे उस समय से पता लग गया था कि मेरा पुत्र का वध हो चुका है। हाँ, तो मुझे पता था, फिर भी इतने पर भी मेरा आपके ऊपर एक आशा था कि आप ये युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन आप ऐसा नहीं किए। और मैं आपको अभिशाप देती हूँ, जिस प्रकार अभी भरत वंशियों की स्त्रियां रो रही है, ठीक उसी प्रकार आपके जो वृष्णिवंशियों के जो स्त्रियां अपने कुटुंब को खोकर हाँ एक दिन ऐसे ही रोएंगे। जैसे ही कठोर वचन को भगवान श्री कृष्ण सुने, हाँ तो भगवान श्री कृष्ण कहें, अरे बुआ, अरे मैं ये बात जानता था ये बात होने वाली है। और जो बात होने वाली है आप वही बात के ऊपर आपने साप दिया, क्योंकि ये संसार में, ये पृथ्वी में ऐसे कोई शक्ति नहीं है। हाँ, ऐसे तो मनुष्य छोड़ो, देवता लोग, असुर लोग भी ये जादव वंश को ध्वंस नहीं कर पाएंगे। मेरे दैवी कोप से ये वृषिवंशी हाँ ध्वंस जाएंगे। तो आप जो बात होने वाली है तो उसी के ऊपर आपने साप दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर इस संसार में ईर्षा, द्वेष, प्रतिशोध की भावना वो पड़ी रहती है। कितने भक्ति में अग्रगति आगे होने के बावजूद भी ये जल जाता, और बाजू की चीज तो जल जाती है, नष्ट हो जाती है, लेकिन उनका जो बीज है वो पड़ा रहता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, गांव के जो लोग हैं वो लोग जानते हैं, बांस जल जाती है, लेकिन बांस का जो मुद्गुर है ना, वो आग में हाँ होने पर भी, आग लग जाने के बाद भी वो कुछ बच जाता है। ठीक उसी प्रकार भक्ति करते करते तो अनर्थ तो प्राय नष्ट हो जाती है। अभद्र चीज जो नष्ट हो ही जाती है, किंतु बचा कुचा ऐसे बीज अंकुर कहीं पर पड़ी रहती है। जैसे ही अनुकूल वातावरण मिल जाती है उनको, तो फिर वो पौधा उगती है। हाँ, फिर वो विषय वासना में आ जाती है। हाँ, तो भगवान सिंह के शरण लेने से भी करने से तो हमें पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु पाप भगवान पाप से मुक्त करा देते हैं। भगवान कहते हैं, मैं जैसे कोई व्यक्ति मेरे शरण में आता है कि भक्ति का शरण में आता है, तो वो पाप से मुक्त हो जाता है, किंतु उनको भक्ति नहीं प्राप्त होती है। और जब तक भक्ति नहीं प्राप्त होती है, तब तक बद्ध जीवों के भीतर विषय वासना इतने प्रबल है, इतने जोर है, तो जब तक बद्ध जीव के हृदय में भक्ति उगती नहीं है, भक्ति उत्पन्न नहीं होती है, तो विषय वासना का सामना सही रूप में कर नहीं पाता। करता है, लेकिन जब तक परिपक्व भक्ति के सही अवस्था में नहीं आता, तो फिर वो विषय वासना की ओर झुक जाती है। वो पूरा पूरा कन्विंस नहीं है, भक्ति और विषय, हाँ भौतिक और भक्ति के बीच में अटक जाता है। वो पूरा कन्विंस नहीं हो पाता है सही क्या है। तो उनके वो दुविधा, ये संकट में रहता है। हाँ, तो कहने की बात ये है, मैं क्या कहना, जब हाँ पूर्ण रूप से जब भक्ति की प्राप्त नहीं करते, तो वो हाँ हमारे हृदय में पड़ी रहती है, हमें उनसे मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन जैसे हमें पापों से मुक्त हो जाते हैं, अनर्थ से पूरा पूरा भी मुक्त नहीं हुए हैं, चांस है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने का। भगवान भी ये भगवद्गीता में बताते हैं कि शरणं ब्रज मोक्षयिष्यामि, मैं मुक्त कर देता हूँ। शरणं ब्रज, शरण लेने से मुक्त हो जाते हैं। कहां से? पापों से। फिर जीवात्मा को उही से आगे उठना होता है, जीवात्मा को अपने प्रयास शुरू करनी होती है। पापों से मुक्त भगवान तो करा देते हैं, मुक्षयिष्यामि मुक्त करा देते हैं, लेकिन उही से जीवात्मा का प्रयास चालू हो जाती है। कि भगवान भक्ति नहीं देते हैं, पाप से मुक्त कर देते हैं। सांसारिक जकड़न से भगवान जीव को मुक्त करा देते हैं। मुक्त होने के बाद जीव को वहीं से भक्ति करना होता है। भक्ति मतलब क्या है? प्रेम है। और भगवान ये प्रेम अपने आप नहीं देते, अपने तरफ से नहीं देते। वहीं से जीव को भगवान को स्वतः प्रेम करना चाहिए, प्रेम करने की प्रयास शुरू करना चाहिए, तब जब भक्ति करने से भक्ति प्राप्त होती है। तो कहने के अर्थ यह है, तो प्रत्येक जीव के भीतर इस संसार में हाँ इस प्रकार का अनर्थ पड़ी हुई है, लेकिन भक्ति करते करते धीरे धीरे ये अनर्थ से हमें मुक्त हो जाते हैं। यही बात को भी प्रभुपाद जी ने आज के तात्पर्य में बताते हैं, चाहे वो परशुराम हो या चाहे वो कार्तिक अर्जुन हो या चाहे वो जमदग्नि हो, लेकिन यदि बुद्धिमान से बुद्धिमता से कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि इस संसार में प्रत्येक जीव अनेक अनेक इच्छाओं के द्वारा बंधा हुआ है, और ये छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे पड़ते हुए ये छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में वो शुद्ध भक्ति को खो देता है, वो शुद्ध भक्ति कर नहीं पाता। छोटे छोटे इच्छाओं को पूरा करने के चक्कर में वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने आवाज दी है कि ना धनम ना जनम ना सुंदरी। धन छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, आश्रम में आके जॉइन कर लेते हैं, हाँ साधु संन्यासी का वेश ले लेते हैं, लेकिन मान सम्मान प्रतिष्ठा की जो भोक है जीवों को अनेक अनेक समयों से साधती है। ये एक धधकती हुई आग की तरह, काम रूपेण कौंते दुष्परेण अनलेच, ये एक आग है, ये एक अग्नि के तरह ये हृदय में वो बैठी हुई है। जब तक काम रूपी इच्छा, यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं, भले चाहे वो व्यक्ति कितना बड़ा व्यक्ति हो, जब तक बुद्धि योग बुद्धिमत्ता से, बुद्धि योग मतलब क्या, भक्ति योग, भक्ति योग, बुद्धि योग मतलब भक्ति योग, भक्ति योग से खाली कर्म 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 और ज्ञान, ये दो जहाला बहन है, ये दोनों पिशाची है, ये मार्ग के द्वारा शोधित नहीं कर सकता, शोधन पूरा पूरा शुद्ध नहीं हो सकता, पूरा पूरा क्या है, शुद्ध है हो ही नहीं सकता जीव। कर्म क्रिया ज्ञान क्रिया के द्वारा जीव अपने को शुद्ध नहीं कर सकता जब तक भक्ति का आश्रय नहीं लेता। तो यही बात को प्रभुपाद जी कहते, जब तक बुद्धिमानी से भक्ति योग के द्वारा जीव कर्म नहीं करता तो फिर वो चीजों से मुक्त नहीं हो पाता, सांसारिक अनर्थ से अपने को छुड़ा नहीं पाता। पूर्ण रूप से समर्पित होकर और हेतु की भक्ति करना, ऐसे अहेतु की भक्ति करने वाला ये संसार करने का जो ग्राहक है ये संसार में बहुत कम है। कभी कभी ये शुद्ध भक्तों की ये खूबी है, शुद्ध भक्तों की ये एक बहुत बड़ा उदारता है, तो ऐसे ग्राहकों को वो पकड़ रखने के लिए और उनको अज्ञात सुकृति प्रदान करने के लिए वो एकदम उनको बासुमती राइस और खांटी काव घी खिलाते हैं ना, उनको अज्ञात, हमें कभी कभी भक्ति छोड़ करके बाहर चले जाने चाहते हैं, लेकिन आचार्य लोग जो भगवान के सच्चे भक्त है तो वो जीव को अज्ञात सुकृति प्रदान करने के लिए वो क्या करते हैं, तो काव एक बासुमती राइस और काव घी, मतलब कुछ कभी कभी उनको प्रतिष्ठा दे करके वहां पर उनको अटकाना चाहते हैं, कभी कभी बड़े बड़े पोस्ट दे करके उनको रोकाना चाहते हैं, भक्ति मार्ग में उनको रोकाना चाहते हैं। इस संदर्भ में भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज एक छोटी सी बात कहते थे, एक व्यक्ति थे बहुत बड़े व्यक्ति थे, तो उनके घर में कोई नौकर चाकर रुकते नहीं थे, जो भी कोई आते थे वो दो दिन के बाद चले जाते थे। तो एक बार वो जमींदार के घर में उनके एक मित्र आए और मित्र के सामने ये बातें को बताएं जमींदार जी कि घर पे कोई भी नौकर नहीं रुकते हैं। तो उनके मित्र कहने लगे, देखो आप आपके आज के बाद जो भी कोई नौकर आएगा तो उनको 6 महीना उनको काम नहीं देना, उनको 6 महीना तक बासुमती राइस और काव का खांटी घी खिलाओ, 6 महीना तक उनको खिलाओ, कुछ काम नहीं देना, और हर 6 महीना के बाद आप जितना चाहो उनसे काम ले सकते हो। तो बोल करके चले गए और जमींदार जी के घर में जो नौकर आए तो उनको 6 महीना तक वही किया, उनको खिलाए और काव का घी पिलाए और उनको कुछ काम नहीं बताए। 6 महीना के बाद जब जमींदार जी कुछ काम दिए और काम का उजन जब आया सर पे, तो वो व्यक्ति इधर उधर कहने लगा, इतने काम भारी हो रही है तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, इधर उधर कहने लगा। कभी कभी हमें भी ऐसे कहते हैं, क्या ये सेवा देते हैं, क्या ये सब हो रही है, सब ये सब बहुत कुछ हो रही है आश्रम के जीवन में भी, आश्रम जो है वो भी बाहर से भी ये नहीं है, आश्रम में भी कली घुस जाती है, आज के समय ऐसा हो गया आश्रम में भी कली आ गई है, कली आ गया है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ मैं आश्रम में आश्रम के निवासी भक्त हो गए और कली से मुक्त हो गए ना, आश्रम में ज्यादा करके कली है, बाहर लोग तो ऐसे कली में है ही, लेकिन आश्रम में जो भक्त अभी है तो ज्यादा कली में है, इसीलिए बहुत सारे चीजें अनर्थ दिखती है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ हाँ तो व्यक्ति ना, तो व्यक्ति कहने लगा, इधर उधर कहने लगा, हमें भी ऐसे कहते हैं हाँ ये सब क्या हो रही है, ये सब क्या है, लेकिन क्यों देख रहे हो, होने दो ना, मुझे क्या करना है, मुझे भक्ति करना है। यदि हमारा भक्ति यदि गोल है, हमारा जीवन का जो ध्येय वस्तु गोल भक्ति है, तो हजार माथा पीटा होना दोनों बाजू में, आगे पीछे जो भी कुछ होना, मुझे क्या मतलब है, मुझे जो चीज को पाने के लिए मैं वहां पर आया हूं पड़ा हूं, हाँ तो वो चीज मुझे करना है, तो दुनियादारी क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या, मुझे क्या करना है। यदि वो चीज भक्त यदि वो ठान लिया, अपने मन में बैठा लिया, तो फिर वो दुनियादारी व्यापार में वो बह नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार वो व्यक्ति कहने लगा हाँ ये हो रहा है ये हो रहा है, तो जमींदार जी कहने लगे यदि जमता नहीं है तो छोड़ के चले जाओ, जहां पर आपको ठीक लगेगा वहीं पर चले जाओ। तो वो व्यक्ति छोड़ के चला गया और छोड़ के बाहर जाकर के बहुत कुछ खोजने लगा, हाँ लेकिन कहीं पर उनको ये बासमती राइस और काव घी नहीं मिला। तो ढूंढ ढूंढ के फिर जमींदार जी के घर पे आया, तो ढूंढ ढूंढ के कभी कभी बाहर चले जाते हैं, आश्रम छोड़ के बाहर चले जाते हैं, फिर ढूंढ ढांड के फिर भी आश्रम में आ जाते हैं। तो ये व्यक्ति आ गया और जमींदार जी के पास आता था और कुछ दिन चुप करके फिर चला जाता था। फिर जब काव घी और बासुमती राइस याद आता था, फिर वो बाहर से जमींदार जी के पास आ जाता था। तो लोग पूछते थे अरे ऐसा क्या कर रहे हो ना, मुझे जमींदार जी के प्रति एक प्रकार का ममता हो गई है। हाँ तो ये नहीं बता रहा है कि मैं ये काव खांटी घी और बासमती राइस का मोह छोड़ नहीं पाता, ये नहीं बता रहा है। तो क्या कह रहा है कि मुझे जमींदार जी के प्रति बहुत बड़ा प्रेम हो गया। हाँ तो उसी प्रकार हमारा अवस्था ऐसा ही है, आश्रम तो ज्वाइन कर लेते हैं तो कभी कभी छोड़ते हैं, कभी अंदर आ जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं, ऐसा ये हमारा जो ये भक्ति है ना, ये सालग्राम शिला में बादाम को तोड़ने की भांति है ना। कभी कभी हमें सब भक्ति के बताया जाता है, प्राप्त मिल जाता है, लेकिन वो भक्ति के सहारा के द्वारा हम क्या करते हैं, हाँ सालग्राम शिला को लेकर के सालग्राम शिला को एक साधारण पत्थर समझते हैं और उसको इस्तेमाल करके हमें बादाम तोड़ करके उनको खाना चाहते हैं। मतलब भक्ति के नाम पर हमें भोग करना चाहते, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करने की बहाना में हमारा हृदय में चली हुई बातें को पूरा कर लेना चाहते हैं। ये भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज अपने शिष्यों को एक प्रकार प्रवचन देते हुए बता रहे थे कि हरि गुरु वैष्णव का सेवा तो मिल जाता है, लेकिन सेवा यदि अहेतु की नहीं होती है तो फिर हमारा जीवन का जो मार्ग है हमें उनको चुन नहीं पाते, खोज नहीं पाते। भक्ति का सही सही दिशा, भक्ति आसान है, हरिनाम जप करने मात्र से ही कृष्णा आपके सामने, यदि अन्य और कुछ अभिलाष हेतु नहीं है, भक्ति जो है अहेतु की है, लेकिन उसके भक्ति के पीछे जो हेतु लग गया तो फिर आप लाखों जन्म हरिनाम जप करो ना, हरिनाम के द्वारा कृष्ण का दर्शन नहीं होती है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह देते हैं कि एक बार हरिनाम लेने से अनेक जन्मों का अनर्थ नष्ट हो जाती तुरंत। ये हरिनाम इतने शक्तिशाली है तो एक बार हरिनाम लेने से अनेक जन्मों का अनर्थ नष्ट हो जाती है। और दूसरे हरिनाम भगवान का नाम लोगे, कृष्ण प्रेम हृदय में उगती है, प्रकाशित होती है, तो हमारा होती क्यों नहीं है, ये प्रेम हमें प्राप्त क्यों नहीं कर पाते, तो खोजना चाहिए, हमारा हृदय में कमजोरी को देखना चाहिए। निश्चित रूप से ये हरिनाम के द्वारा और कुछ हमें चाहते हैं, जब और कुछ चाहते हैं कि और कुछ करना इच्छा है, तो फिर ये हरिनाम अपने शक्ति को हमारे हृदय में प्रकाशित नहीं करेगा। भक्ति का जो आनंद है वो रियलाइजेशन हमारे हृदय में अनुभव नहीं होगा। तो यही बात आज के श्लोकों के द्वारा कहा जाता है, इस संसार में ऐसे कि आध्यात्मिक रास्ते में चलते हुए आध्यात्मिक प्रगति करने वाले बहुत बड़े बड़े व्यक्ति दिखते हैं, लेकिन यही चीजों के कारण वो मारे जाते हैं, वो सही 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 स्थान पर पहुंच नहीं पाते। तो हमारी दशा भी इसी प्रकार का है, तो भक्ति तो करते हैं लेकिन अनेक जन्मों का जो अनर्थ है वो उस चीजों से मुक्त तो नहीं हो पाते, इसीलिए हमें अधूरे आधा रास्ता में अटक जाते हैं। तो ये आधा रास्ता से उठाने के लिए भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, बस कुछ नहीं करना है, बस जो गाइड करते हैं, जो आदेश है हमारे लिए, ये आदेश को यदि हमें आंख बंद करके करेंगे, पालन करेंगे, तो वो आधा रास्ता जो अटका हुआ ये संसार में हम जो अटके हुए हैं, हमें उड़ सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो पहुंचने का एक मार्ग, एकमात्र मार्ग है, जमदग्नि आखिर में क्या कहा अपने पुत्र परशुराम को, क्या कहा, तुमने ऐसा किया, ऐसा क्यों कर दिया, हाँ कार्तिवीर्य और उनका वध कर दिया, सारे संसार के क्षत्रियों को निपात कर दिया, हाँ जब ऐसा कर दिया तो जमदग्नि ने क्या प्रस्ताव क्या दिया, आपने ऐसे सब क्यों किया, तीर्थों का भ्रमण करो। यदि किसी के भीतर तीर्थ भ्रमण करने की योग्यता नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन जो लोग तीर्थों का भ्रमण करते हैं, ऐसे तीर्थ भ्रमणकारी व्यक्ति के शरण में चले जाइए। यदि हमारे भीतर कोई शक्ति नहीं है अनेक तीर्थों का तीर्थ व्रत करने के लिए, लोग जो करते हैं तो उनके संरक्षण में हमें यदि जीवन को चलाएंगे, हमारे आध्यात्मिक जीवन को उनके हाथ में हैंड ओवर कर देंगे, तो निश्चित रूप से कोई दिशा आपके सामने दिखेगी। तो यही दिशा को प्राप्त करने के लिए हमें एक सही मार्ग की, सही गाइडेंस की जरूरत है। पीपल ऑलवेज वांट्स ए परफेक्ट लीडर। आज की जनता इतने कंफ्यूज है, आम जनता इतने मतलब ऐसे उनको मतलब ये किया गया है, मतलब कंफ्यूज किया गया है, तो लोगों को पता नहीं चल रहा है मार्ग क्या है। आज एक सही लीडर का आवश्यकता है संसार में, अभी एक सही नेता की आवश्यकता है। यही सही नेता यदि भगवान के शुद्ध भक्त हमारे जीवन में आ जाते हैं, तो उनके उपदेश के अनुसार यदि हमें भक्ति के जीवन में चलाते हैं, तो अवश्य शांति प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद। तो ये श्लोकों को, ये ऐसे श्लोक है तो उनको समझ में मुझे कुछ आया नहीं, तो जो भी कुछ समझ में आया तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। जो सार वस्तु के रूप में मैं भक्ति को रखा, तो ये भक्ति को यदि अमल कर लोगे, यहाँ से आए हो तो वहीं से भक्ति को चुरा के लेके जाओगे, भक्ति को चुरा कर लोग को लेके जाओगे, मतलब राधा गिरिधरी को लेके जाओगे, तो फिर आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो एनी क्वेश्चन या एनी कमेंट्स। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की निताई गौर प्रेमानंदे।